लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, गाजा की 21 लाख की आबादी के समक्ष उपजा खाद्य संकट लंबे समय तक जारी रहने की आशंका है, जिससे लगभग 5 लाख लोग तीव्र कुपोषण, भूखमरी की हालात और गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बदतरीन भूखमरी संकट में तब्दील हो चुका है। इसराइली सहायता नाकाबंदी के कारण और अधिक लोगों की मौतें होने, विस्थापन और तबाही बढ़ गई। इसराइल द्वारा 11 सप्ताह तक राहत सामग्री पर थोपी गई पाबंदी के बाद पहली खेप में 5 ट्रकों में सामान लादकर रवाना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय मामलों के प्रमुख ने अब सीमित सहायता सामग्री के प्रवेश को अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है, मगर साथ ही ये भी कहा है कि गाजा में अधिक सहायता सामग्री की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसियों ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को हमास की ओर भेजे जाने के इसराइली आरोपों का एक बार फिर से पुरजोर ढंग से विरोध किया है। इस बीच इसराइली बमबारी में 16 मई की रात को कम 64 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
WHO की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि गाजा में ये आतंक की एक और रात थी। हमलों में घायल हुए लोगों ने उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल से मदद मांगी, हालांकि 19 महीनों से जारी युद्ध के बाद ये केवल एक ढांचा ही रह गया है। डॉक्टर मार्गरेट हैरिस कह रही थी कि लोग दहशत में हैं, ये 20 लाख लोग हैं दहशत में और इंसान अंतहीन भय सहन करने के लिए नहीं बने हैं। यहां तक कि बहुत मजबूत लोग भी निरंतर जारी दहशत और सदमे के वजन तले टूट जाते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसियों ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को हमास की ओर भेजे जाने के आरोपों का एक बार फिर पुरजोर विरोध किया है और सहायता आपूर्ति पर लगी इसराइली रोक को हटाए जाने की मांग की है। ओचा के अनुसार निरीक्षण और दानदाताओं को जानकारी देने की सख्त व्यवस्था की वजह से सभी राहत सामान की वास्तविक समय में नजदीकी निगरानी की गई और सामान को कहीं और भेजे जाने की संभावना कम है। ओचा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों के पास गाजा रवाना करने के लिए 9000 ट्रकों में महत्वपूर्ण सामान तैयार है। इनमें से आधे से अधिक ट्रकों में इतनी खाद्य सामग्री लदी है जिसके जरिए 21 लाख लोगों को अगले कई महीनों तक भोजन मुहैया कराया जा सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OSCHR ने इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में लोगों को बेतुके ढंग से जान से मार दिए जाने को रोके जाने का आग्रह किया है।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुए एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा अभियानों के भविष्य पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सदस्य देशों से शांति समर्थन सुनिश्चित करने और धन कटौती के असर को टालने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने आगाह किया है कि शांति रक्षा अभियान बढ़ते दबावों का सामना कर रहे हैं और इन अभियानों को स्वयं को आज के दौर के बढ़ते खतरों के अनुकूल ढालना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुए इस मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में 130 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के लिए समर्थन दिया है। इसके तहत इन देशों ने सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करने का संकल्प जताया है। यूएन प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि देशों को हिंसक टकराव से शांति की दिशा में ले जाने के लिए शांति रक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
UN peacekeeping operations are a cornerstone of the United Nations. Each and every day, peacekeepers are hard at work in troubled spots around the world.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि UN शांति रक्षा अभियान संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला है। हर दिन शांति रक्षक दुनिया भर में कठिन स्थानों पर लड़ाई में फंसे आम नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, युद्ध विराम को बनाए रखे हैं, जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं और हिंसक टकराव से तबाह हुए देशों में शांति की बुनियाद का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक दुनिया सबसे अधिक संख्या में हिंसक टकरावों का सामना कर रही है, मगर शांति रक्षा अभियान भी विशाल चुनौतियों से जूझ रहे हैं और यूएन शांति रक्षकों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं।
कोविड 19 महामारी का प्रकोप जनवरी 2020 में शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इस बीमारी ने दुनिया भर में देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे बचाव के लिए तालाबंदी उपाय को अपनाया गया। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कोविड 19 महामारी के बाद दुनिया के सबसे संपन्न देशों में बच्चों के मानसिक कल्याण, शैक्षिक प्रदर्शन और शारीरिक विकास में गिरावट दर्ज की गई है। यूनिसेफ का एक नया अध्ययन बताता है कि बच्चे स्कूलों में आशा से कम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मोटापे की चपेट में आने की आशंका बढ़ी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
रिपोर्ट में 2018 से 2022 के आंकड़ों की तुलना की गई है। कोविड 19 के दौरान जब स्कूल बंद रहे, तब 3 से 12 महीनों तक बच्चों को अपने घरों से पढ़ाई करनी पड़ी। इसका असर इतना गहरा पड़ा कि 43 देशों में 15 साल के लगभग 80 लाख बच्चे पढ़ने और गिनती जैसी बुनियादी कौशलों में पिछड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा है जो पहले से ही आर्थिक या सामाजिक चुनौतियों में जीवन जी रहे थे। नेदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे देशों ने जहां बाल कल्याण के स्तर को ऊंचा बनाए रखा, वहीं कई देशों में बच्चों की मानसिक स्थिति और जीवन में संतुष्टि में गिरावट आई है। 32 में से 14 देशों में बच्चे पहले से ज्यादा असंतुष्ट हैं। इसके अलावा बच्चों में मोटापे के मामले भी बढ़े हैं। 43 में से 14 देशों में ज्यादा वजन वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
विकलांग व्यक्तियों के जीवन और आकांक्षाओं की दिलचस्प कहानियों के कुछ रुचिकर आयाम प्रस्तुत करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र ने 14 और 15 मई को यूएन हाउस में वी केयर नामक फिल्मोत्सव का आयोजन किया। 20 वर्षों से ब्रदरहुड संस्था और भारत में संयुक्त राष्ट्र मिलकर यह फिल्मोत्सव आयोजित करते आए हैं। इस वर्ष ईरान, रूस, अर्जेंटीना, इजराइल और पोलैंड जैसे देशों से 200 से अधिक फिल्में इस महोत्सव में दिखाई गई। गहन चयन प्रक्रिया के बाद 3 श्रेणियों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को चुना गया। इनमें भारत की श्रीकांत और रब दी आवाज भी शामिल थी। कार्यक्रम में पैनल चर्चा के बाद यूएन की अंशु शर्मा ने WFP के संचार प्रमुख परविंदर सिंह के साथ बातें की, जो खुद एक विकलांग होने के नाते वर्षों से विकलांग जन के अधिकारों और समावेशन के क्षेत्रों में काम करते रहे हैं।
भारतीय सिनेमा में विकलांग व्यक्तियों को किस तरह प्रस्तुत किया जाता है और किस तरह का बदलाव लाए जाने की जरूरत है?
या तो उनकी विकलांगता को एक ह्यूमर या एक कैरेक्टर की तरह पॉइंट आउट किया जाता है, जिस उनके हाथ या पैर नहीं है या किसी वजह से वो बेड रिडन है, वो सारी चीजों को ह्यूमर के थ्रू बहुत दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं ड्रामेटाइजेशन और जो सोशल स्टीरियोटाइप है, जो समाज में भ्रांतियां हैं विकलांगता को लेके, वो ज्यादा बढ़ा दी जाती है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
जगत के सृजनहार तेरी हो जय
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम स्थित संत जॉन लातरान महागिरजाघर में रविवार 25 मई को पद प्रतिष्ठापन के लिए आयोजित ख्रीस्त्याग समारोह से पूर्व रोम के नगराध्यक्ष रोबेर्टो ग्वाल्टियरी कैंपिडोलियो की सीढ़ी के नीचे संत पापा लियो 14वें को शहर की ओर से सम्मानित करेंगे। वैटिकन स्थित प्रेस कार्यालय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम रोम समयानुसार संध्या 4:15 बजे आयोजित किया जाएगा। रविवार 25 मई को ही संत पापा लियो 14वें संत जॉन लातरान महागिरजाघर में पवित्र ख्रीस्त्याग की अध्यक्षता करेंगे तथा रोम के धर्माध्यक्ष रूप में रोमी धर्म पीठ पर पद प्रतिष्ठापन करेंगे। ख्रीस्त्याग समारोह के तुरंत बाद संत पापा लातेरान महागिरजाघर के केंद्रीय झरोके से रोम शहर को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होंगे। तदोपरांत शाम 7 बजे संत पापा रोम के मरियम महागिरजाघर सांता मरिया मज्जोरे जाएंगे और वहां सालूस पॉपुलो रोमानी की मरियम प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना अर्पित करेंगे। वैटिकन स्थित परम धर्म पीठीय संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ गुरुवार की मुलाकात में संत पापा लियो 14वें ने सन 1987 में इक्वाडोर के मूल निवासियों द्वारा मारे गए एक स्पानी धर्माध्यक्ष और एक कोलंबिया की धर्म बहन तथा भारत के एक धर्माध्यक्ष को कलीसिया की वेदी पर सम्मानित किए जाने से संबंधित आदेशों को अनुमोदन प्रदान कर दिया। धर्माध्यक्ष अलेसांद्रो लबाका उगार्ते का जन्म सन 1920 में स्पेन में हुआ था। कैपुचिन धर्म समाज में शपथें ग्रहण करने के उपरांत 1945 में आप पुरोहित अभिषिक्त किए गए तथा चीन में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रेषित कर दिए गए, किंतु माओवादी शासनकाल के दौरान उन्हें चीन से निष्कासित कर दिया गया। चीन से आपने इक्वाडोर का रुख किया, जहां कई वर्षों तक इक्वाडोर के मूल निवासियों और विशेष रूप से तगेरी देशज लोगों के बीच पल्ली पुरोहित रूप में सेवा अर्पित करते रहे और 1984 में धर्माध्यक्ष अभिषिक्त हुए। इक्वाडोर की तेल की खदानों में काम करते गरीब आदिवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले धर्माध्यक्ष उगार्ते तथा उनकी सहयोगी धर्म बहन कोलंबिया की सिस्टर आग्नेस वेलास्केस की हत्या सन 1987 में कर दी गई थी। इसी बीच संत पापा लियो 14वें ने भारत के कैथलिक धर्माध्यक्ष मतेओ माकिल के विषय में प्रस्तुत आज्ञप्ति को भी मान्यता दी। धर्माध्यक्ष माकिल धन्य कुंवारी मरियम के भेंट को समर्पित धर्मसंघ के संस्थापक हैं। आपका जन्म केरल में 1851 में तथा पुरोहिताभिषेक 1865 में हुआ था। 1889 में आप कोट्टायम धर्म प्रांत के प्रति धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तथा 1896 में आप चंगनाचेरी के एपोस्टोलिक विकर के पद पर नियुक्त कर दिए गए थे। 1892 में आपने धन्य कुंवारी मरियम की भेंट को समर्पित धर्मसंघ की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य किशोरियों की शिक्षा था। केरल में उस समय दो समुदायों के बीच तनाव बने रहते थे, जो कभी कभी हिंसक हो उठते थे। ये थे चंगनाचेरी के उत्तर में निवास करने वाले, जो खुद को संत थॉमस के उत्तराधिकारी मानते थे, तथा दक्षिण निवासी, जो खुद को मेसोपोटामिया के आप्रवासी घोषित करते थे। इनके बीच सुलह करने के लिए धर्माध्यक्ष माकिल केरल के शांति निर्माता रूप में विख्यात हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप संत पापा पियूस 10वें ने सन 1911 में चंगनाचेरी प्रति धर्माधीक्षीय पीठ को दो प्रेरितिक पीठों में विभक्त कर दिया था। शांति निर्माता धर्माध्यक्ष मतेओ माकिल का निधन एक बीमारी के उपरांत सन 1914 ईस्वी में हो गया था। संत पापा लियो 14वें को गुरुवार 22 मई को संत रीता के पर्व दिवस पर हिप्पो के धर्माध्यक्ष द्वारा सुझाई गई सामग्री से प्रेरित केक दे ब्याता वीता अर्पित किया गया। संत अगस्तिन का खुशी का केक नाम से विख्यात यह केक मैदे, बादाम और शहद से बनी एक मिठाई है। संत पापा ने अपने एक पुराने परिचित द्वारा भेजे गए इस उपहार की सराहना की और इसे संत अगस्तिन धर्म सामाजी भाइयों के साथ साझा किया। स्मरण रहे कि संत पापा लियो भी इसी धर्म समाज के सदस्य हैं। खुशी का केक मिठाई का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तरी इटली के कजागो ब्रियांजा में किया गया था, जहां संत अगस्तिन ने अपनी कृति दिव्याता वीता लिखा था। अपनी माता संत मोनिका द्वारा तैयार इस मिठाई को संत अगस्तिन ने अपने 32वें जन्मदिन पर अपने भाइयों और बहनों के साथ साझा करते हुए कहा था, मुझे लगता है कि मुझे अपने जन्मदिन पर न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी अधिक प्रचुर भोजन की पेशकश करनी चाहिए। भोजन से पूर्व उन्होंने अपने मेहमानों को समझाया कि भौतिक भोजन के अलावा एक आध्यात्मिक भोज भी है जो आत्मा को पोषित करता है और खुशी की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा, सत्य पर भोजन करना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना व्यक्ति को खुश करता है। यह मिठाई आज भी खुशी की मंगल कामना के रूप में दी जाती है, जो संत पापा लियो 14वें को 8 मई को आरंभ उनके परमाधीक्षिक काल के लिए शुभकामनाओं सहित 22 मई को संत रीता के पर्व दिवस पर अर्पित की गई। विश्व के 70 से अधिक देशों में संघर्ष, बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित लोगों तथा स्वास्थ्य देखभाल से वंचित लोगों को निष्पक्ष चिकित्सा प्रदान करने वाले मानवतावादी संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार गाजा में स्थिति अत्यंत भयावह बनी हुई है। गाजा सिटी में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की चिकित्सा निदेशक मार्टिना मार्कियो ने कहा, गाजा में मानवीय स्थिति भयावह है, हम सचमुच अंतिम चरण में है। वैटिकन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पट्टी पर लगातार उड़ रहे ड्रोनों के शोर के बीच युद्ध विराम और सीमाओं को फिर से खोलने की तत्काल आवश्यकता है ताकि सहायता बड़े पैमाने पर और निरंतर रूप से पहुंच सके। चिकित्सा निदेशक मार्कियो ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है और पहुंचाई गई सहायता भी 20 लाख से अधिक निवासियों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। उन्होंने बताया, इजरायली जमीनी कार्रवाई, तीव्र हवाई हमलों और निकासी आदेशों के कारण पिछले सप्ताह गाजा में कम 20 चिकित्सा सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई अथवा उन्हें आंशिक रूप से या पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा देखभाल और सहायता की सख्त जरूरत है, इसलिए कि उन्हें एक ही समय में पट्टी के कई हिस्सों में भारी, हिंसक और क्रूर हमलों तथा बड़े पैमाने पर निकासी आदेशों के कारण हर दिन स्थानांतरित होना पड़ता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।